आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। मंगलवार की शाम 8 नवंबर दिन भर सुन रहे हैं आप, मैं हूं खुशबू कुमार। चुनाव है हिमाचल में इसी शनिवार को। इस बीच आज कांग्रेस के 26 नेता भाजपाई हो गए। क्या इसका कुछ चुनाव पर असर होगा और क्या कुछ माहौल का अंदाजा अब लगने लगा है? दिन भर में सबसे पहले इसी की बात, फिर चर्चा अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन की। क्या है मुद्दे इस बार और क्या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन कोई उलटफेर कर सकती है, जानेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि एनर्जी प्राइस बढ़ने की वजह से कई देशों में बिजली संकट पैदा हो सकता है। क्या भारत इससे अछूता रहेगा या हमारे लिए भी कोई चिंता की बात है? और आखिर में ठंड की बात। नवंबर आ गया है लेकिन ठंड है कि आ ही नहीं रही। क्यों ऐसा हो रहा है समझाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनिए शुभम तिवारी से।
शुक्रिया खुशबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। दिसंबर में भारत को मिलेगी अध्यक्षता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके रूसी काउंटर पार्ट सर्गेई लावरोव ने आज रूस के मॉस्को में की मुलाकात। रूसी विदेश मंत्री के सामने बोले एस जयशंकर कि जिससे फायदा होगा उसी से खरीदेंगे तेल। तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश रद्द किया। अमेरिका के दौरे पर है फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा। यहां उन्होंने अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से की मुलाकात। गुजरात से 11 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल। उधर पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा ने लॉन्च की प्रजा विलय पार्टी। महाराष्ट्र में होम डिपार्टमेंट के आदेश के खिलाफ डीजीपी ने 9 अफसरों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में दिखा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण।
ये है आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर, मैं हूं खुशबू। शिमला में ठंड है लेकिन राजनीतिक माहौल एकदम गर्म। 12 नवंबर को वोटिंग है। राजनीतिक छींटाकशी और चुनाव प्रचार के बीच आज कांग्रेस के 26 नेताओं ने पाला बदल लिया। वे जो पंजे के लिए वोट मांगते थे अब कमल के लिए मांगेंगे। इस बदलाव से कांग्रेस को क्या बड़ा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि इन नेताओं की वोटर्स में कैसी अपील है, ये किन इलाकों से आते हैं। मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से।
ये लोग पूर्व कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेजिडेंट हैं हर्ष महाजन, जिन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनके समर्थक हैं। ये शिमला से ताल्लुक रखते हैं, इनका कोई बड़ा राजनीतिक कद नहीं है। खुद कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक साक्षात्कार में हमें बताया है कि इनका कोई बड़ा राजनीतिक कद नहीं है और इन बागियों के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने से कांग्रेस के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता पाला बदल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खीमीराम भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव के दौरान ये सामान्य बात है, नेता इधर से उधर खिसकते रहते हैं, लेकिन जो मत है वो पार्टी के नाम पर गिरता है, ना कि राजनेता के नाम पर।
तो ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल, जो खेमा बदलने वाले नेताओं के बारे में आपको बता रहे थे। चूंकि चुनाव प्रचार के अब गिनती के 2 दिन ही बचे हैं, क्या है वो सवाल और मुद्दे जिसके आसपास लोग वोट करने का मन बना रहे हैं, पूछा मैंने हिमाचल प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शशिकांत से। डॉक्टर शशिकांत पिछले 2.5 दशक से राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को कवर करते आ रहे हैं।
हाँ देखिए, अब हिमाचल के चुनाव जब अंतिम चरण में है तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किस तरह के मुद्दे यहाँ उभर कर सामने आए हैं। और इस दौरान अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति कुल मिलाकर ओल्ड पेंशन स्कीम उस पर जाकर टिकी हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की मुश्किल थोड़ी सी यह है कि अन्य राज्यों में भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो वो इस मुद्दे पर कर्मचारियों के लिए कोई स्पष्ट घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। और बीजेपी ने बड़े सोच समझ कर ये जरूर कहा है कि उसकी भाजपा जो है वो एक विश्वसनीयता वाली पार्टी है, जिसका कि पूरे देश में कई राज्यों में सरकारें और केंद्र में भी उनकी कार्य, तो कर्मचारियों के हितों से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, बेशक उनमें ओल्ड पेंशन स्कीम है या कोई दूसरे मुद्दे, उन सबका समाधान वो खुद कर सकती है। जबकि कांग्रेस ने उसके उलट जिस तरह से घोषणा कर दी है कि वो 10 दिनों के भीतर, अगर उसकी सरकार बनती है तो 10 दिनों के भीतर वो कैबिनेट मीटिंग करके लोगों को ये ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा फिर से प्रारंभ कराएगी। तो यह एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि जो सारे मुद्दों में सबसे ऊपर उभर कर सामने आया है। इसके जवाब में अगर आप देखें तो भाजपा ने एक मुद्दा और दे दिया अपने घोषणा पत्र में कि वो बच्चों को स्कूटी देगी, स्कूल के 8वीं से उच्च शिक्षा वाले बच्चों को या दूसरे बच्चों को साइकिल दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी। तो वो एक मुद्दा है जो अब चुनाव में उभर कर सामने आया, और भाजपा को उम्मीद है कि शायद लोग इस बात पर उन्हें वोट दे देंगे कि वो स्कूटी का प्रावधान वहां पर लोगों को करवाएंगे। तो अंतिम तौर पर तो मुझे लगता है बाकी बेरोजगारी का मुद्दा है या दूसरे विकास का मुद्दा है, वो हर चुनाव में हर तरह से रहते हैं और वो सिर्फ उसी के पक्ष में जाते हैं जो विपक्ष में रहता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के मुद्दे ये नहीं है। अगर वो रोजगार देने की स्थिति में भी हो, तो अगर वो मान लीजिए 1,000 रोजगार भी उपलब्ध कराता है, तो 9 लाख रोजगारों की अगर फौज खड़ी है, तो 1 लाख उपलब्ध करा के भी वो 8 लाख लोगों की आशाओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति में वो हमेशा रहती है। तो ये सारे मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन कुल मिला के जो अभी है, मुझे लगता है भाजपा सिर्फ इस मुद्दे को इस तरह से कह रही है कि कांग्रेस का ये वादा पूरा होने वाला नहीं है, और सिर्फ इस मुद्दे के आधार पर उसे वोट ना दी जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े मुद्दे तो आज की डेट में कर्मचारियों के बहुल इलाका है, यह पूरा प्रदेश कर्मचारियों से भरा पड़ा है, और यहाँ पर लोगों को लगता है कि इसमें बिना इसके तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट नीति भाजपा अपनाए या घोषित करे।
शशिकांत जी, राज्य में 1982 से लगातार अदला बदली होती रही है, एक बार कांग्रेस तो अगली बार भाजपा। आज ही राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मैं बयान देख रही थी, उनका कहना था कि ये सब रिकॉर्ड टूटेगा और बीजेपी अगले 25 बरस तक हिमाचल में सरकार बनाती रहेगी। 25 बरस तो खैर एक बात हुई, लेकिन क्या इस दफा कुछ हवा बदल रही है या लोगों को मौजूदा हवा ही रास आ रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। रिवाज बदलने की बात भाजपा ने कही, लेकिन रिवाज बदलना इतना आसान नहीं है, और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से लगता है कि लोग भाजपा के खिलाफ नहीं है, लोग ना ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ के लोग जो है वो सिस्टम के खिलाफ है, और कुल एंटी इनकमेंसी जो जनरेट हुई है जिसकी बात हमने पहले की है, उस हिसाब से यहाँ के लोगों को एक इस तरह से कि ऐसी भावना देखने को मिल रही है कि भाजपा के लोग जो मौजूदा विधायक है या जो मंत्री है उनके खिलाफ थोड़ा गुस्सा भाजपा के प्रति, जो लोग इनके साथ है उनके प्रति नजर आ रहा है, और दूसरे भाजपा के जो बागी विधायक हैं वो भी इस तरह की स्थिति में नजर आ रहे हैं कि वो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी की ये कोशिश है, तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और इससे निकलना बहुत ही आसान मुझे नहीं लगता कि ये आसान है।
शुक्रिया शशिकांत जी। दूर देश अमेरिका में आज चुनाव है, मिड टर्म इलेक्शन। ऐसा कहने की वजह ये है कि ये चुनाव पिछले राष्ट्रपति चुनाव और अगले राष्ट्रपति चुनाव के बीचों बीच होता है, इसीलिए मिड टर्म इलेक्शन कहलाता है। अगर कुछ एक अपवाद को छोड़ दे तो मिड टर्म इलेक्शन में हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट का नुकसान होता रहा है। ऐसे में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। क्या है मुद्दे, किसकी है बढ़त, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी शुभम तिवारी के पास चलते हैं। उन्होंने कुछ जानकारियां जुटाई हैं कि अमेरिकी सदन का हिसाब किताब क्या है और मौजूदा संख्या कहां किसके पक्ष में है।
अमेरिका के सदन का नंबर गेम आप ऐसे समझिए जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक इसी तरह वहाँ एक सदन जो कि अपर हाउस है सीनेट कहलाता है, और कुल 100 सदस्य होते हैं इसके। चूंकि 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 सीनेटर, तो कुल मिलाकर ये संख्या 100 हो जाती है, और ये सीनेटर जो हैं वे 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और इनमें से 1/3 का चुनाव हर 2 साल में होता है। सो इस बार का जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है इसमें सीनेट के कुल 34 सदस्यों को चुना जाना है। ये तो सीनेट की बात हुई, अब आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहाँ का निचला सदन है उसे समझिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 435 सीट हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 बरस का होता है, यानी हर 2 साल के बाद चुनाव। सो इसकी सभी सीट्स के लिए इस मरतबा वोटिंग हो रही है, और इन दोनों सदनों के अलावा जो सारे राज्य के गवर्नर हैं वे भी चुने जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ डेमोक्रेट्स जिसके नेता जो बाइडेन है वे बहुमत में हैं, और यहाँ की 435 सीटों में से 222 सीटों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वहीं 213 सीटें रिपब्लिकन के पास हैं। यहाँ सीनेट में भी डेमोक्रेटिक पार्टी का ही दबदबा है, क्योंकि देखिए वैसे तो यहाँ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास बराबर सीटें हैं, लेकिन चूंकि कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वे डेमोक्रेट हैं, इसलिए यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी बढ़त में है। और अगर कन्वेंशनली आप देखें तो अक्सर जो पार्टी सत्ता में होती है या फिर जिस पार्टी का राष्ट्रपति होता है अक्सर वे मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्रपति भी रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को मिड टर्म इलेक्शन में जीत दिलाई है, जिनमें चाहे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हों, बिल क्लिंटन हों या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हों।
शुक्रिया शुभम। तो क्या इस बार जो बाइडेन भी इन राष्ट्रपतियों के कतार में शामिल हो पाएंगे या फिर जिस तरह उनके अप्रूवल रेटिंग के गिरने की बात है रिपब्लिकन की वापसी होगी? क्या है मुद्दे इस मिड टर्म इलेक्शन के? मैंने पूछा इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से।
मुद्दे क्या थे? देखिए, COVID-19 के बाद जब मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा था मैनेजिंग COVID-19 इकोनॉमी, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था अभी है अमेरिका की वो काफी बुरे हाल में है, तो ये इकोनॉमिक एंजाइटी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, अबॉर्शन राइट्स जो बहुत बड़ा एक मुद्दा था वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बनकर इलेक्शन में नजर आया। लेकिन क्या डेमोक्रेट्स को उसके लिए सपोर्ट मिलेगा या नहीं वो देखना होगा। क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उस पर भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। और एनवायरनमेंट, जहां पे डेमोक्रेट्स ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है एनवायरनमेंट और हेल्थ केयर के लिए, दो ऐसी चीजें जो बाइडेन सरकार के दौरान अफोर्डेबल हेल्थ केयर कॉस्ट और क्लाइमेट चेंज पर काम हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर अगर बाइडेन सरकार चाहती भी और राष्ट्रपति बाइडेन चाहते भी तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ही बहुत वीक चल रहा है। और ऐसे वक्त में किसी भी एक प्रेसिडेंट पर डिपेंड करना और उनको कहना कि आपको ये पूरा अर्थव्यवस्था ठीक करना होगा, इतने जल्द ठीक करना होगा, थोड़ा अनरियलिस्टिक डिमांड था। लेकिन क्योंकि जब अर्थव्यवस्था खराब होती है सबसे ज्यादा वो अफेक्ट होते हैं जिनके पास पैसे कम हैं इन्फ्लेशन की वजह से, और वो सबसे बड़ा वोटर बेस होता है, तो इन लोगों के पास, रिपब्लिकन्स के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो लोगों के पास जाए और इस मुद्दे को लेकर जाए ताकि उनको उनको हाउस में मेजोरिटी मिल जाए। और अगर आप नंबर्स देखें ऐसा लग रहा है कि शायद रिपब्लिकन्स इस बारी अच्छा करेंगे।
अच्छा गीता, जो चुनावी सर्वे हैं वो क्या कहते हैं? साथ ही मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इस चुनाव परिणाम का क्या इम्पैक्ट आपको समझ में आता है अमेरिका की घरेलू राजनीति और बाहरी राजनीति दोनों के लिहाज से?
देखिए, अगर आप चुनावी सर्वेज की बात करें तो हम बहुत सारे सर्वेज ना देखें, बस एक ही देख लें तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर लीन कर रहा है अमेरिका की जनता, किस तरफ जा रही है। 40% जो है अप्रूवल रेटिंग है बाइडेन का ऑन जॉब परफॉर्मेंस, ये 30 अक्टूबर 1 नवंबर है, मतलब पिछले हफ्ते के ही पोल्स हैं। वही सेम पोल ने ये भी कहा कि 69% अमेरिकन्स ये सोचते हैं कि अभी जो जिस रास्ते पर ये देश जा रहा है अमेरिका वो गलत है, और 18% सोचते हैं कि राइट ट्रैक पर है, यानी कि बाइडेन के की जो पॉपुलैरिटी है डेमोक्रेट्स की वो कम नजर आ रही है होते हुए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेजॉरिटी यानी कि पावर कंट्रोल करने के लिए बस रिपब्लिकन्स को 5 सीट और चाहिए थे, लेकिन हमें लग रहा है कि रिपब्लिकन्स उससे ज्यादा जीत सकते हैं। और अगर रिपब्लिकन्स ने मेजॉरिटी हासिल कर लिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो कई सारे ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जो बाइडेन की सरकार पास नहीं कर पाएगी, तो बाइडेन को अपनी सरकार चलाने में बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सेनेट है, सेनेट में ऐसा लगता है कि शायद डेमोक्रेट्स रिटेन कर पाए सेनेट को, लेकिन अगर सेनेट भी चला गया रिपब्लिकन्स की तरफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सेनेट में उनको कंट्रोल गेन करने के लिए बस 1 सीट की जरूरत है, वो अभी करंटली डिवाइडेड है 50-50। इस डिवीजन में 1 सीट भी एक्स्ट्रा रिपब्लिकन्स के पास चला गया तो डेमोक्रेट्स ना केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कंट्रोल खो देंगे, सेनेट में भी खो देंगे। तो ये कंट्रोल अगर डेमोक्रेट्स हार गए तो उनके लिए काफी सारी मुश्किलें हैं डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी दोनों में।
शुक्रिया गीता। दुनिया भर में महंगाई बेलगाम बढ़ती जा रही है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक संस्था है जो दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर एनर्जी से जुड़ी पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। हाल ही में उनकी एक रिपोर्ट आई जो कहती है कि एनर्जी प्राइस बढ़ने की वजह से कई देशों में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो सकता है, और इस क्राइसिस का स्केल इतना बड़ा है कि करोड़ों लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो सकते हैं। इंडिया टुडे की DIU टीम के मेंबर हैं सम्राट शर्मा, उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। सम्राट, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं?
इस रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में 775 मिलियन लोग यानी लगभग 77.5 करोड़ लोग दुनिया भर में वो उनके पास बिजली का एक्सेस नहीं होगा। और ये आंकड़ा कितना गंभीर है ये इस बात से पता चलता है कि ये साल 2021 के मुकाबले 20 मिलियन ज्यादा है। ऐसा पिछले 20 साल में कम से कम, जब से IEA ने ये स्टडी स्टार्ट की है, ऐसा पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ है कि उन लोगों की संख्या बढ़े जिनके पास बिजली नहीं है। ये लगातार पिछले 20 साल से घटती चली आई है। जैसे ही दुनिया में तरक्की हो रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, गांव गांव तक सरकारें बिजली पहुंचाने का काम कर रही है, ऐसे में लगातार ये नंबर घट रहा था। पर ऐसा पहली बार हुआ है जब 2022 में 20 मिलियन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जिनके पास बिजली नहीं होगी। इसके दो तीन कारण है जो कि पैंडेमिक, एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना, रशिया यूक्रेन की जंग, और ये सब दो तीन फैक्टर्स है जिसके कारण ये ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा IEA का मानना है।
जी सम्राट, आप जिस ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, क्या इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा?
इंडिया के ऊपर ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले IMF या वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेशन की संभावनाएं जाहिर की थी दुनिया भर में, पर उनमें भी ये बताया गया है कि इंडिया पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे पिछले कुछ महीनों के, जैसे कि डॉलर के अगेंस्ट इंडियन करेंसी या फिर कोई भी ऐसा आंकड़ा या GDP ग्रोथ हो जाए, तो बाकी देशों के मुकाबले भारत पर ज्यादा असर नहीं आएगा। और ये भुखमरी की भी बात की जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जो हम बात कर रहे हैं अभी इस रिपोर्ट के बारे में, इसके बारे में भी देखा जाए तो ज्यादा असर आएगा उन कंट्रीज पर जो कि लो इनकम वाले कंट्रीज हैं, जिसमें मोस्टली अफ्रीका सहारन रीजन के कंट्रीज हैं। प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो मोजाम्बिक, सेनेगल, केन्या और इथियोपिया जैसे जो कंट्रीज हैं उस पर ज्यादा असर आएगा। भारत में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। तो ये रिपोर्ट एक तरह से यही जाहिर कर रही है कि कैसे जो अमीर देश होते हैं वो अपने वर्चस्व को, अपनी ताकत को साबित करने के लिए दुनिया भर के पैसे झोंक देते हैं, पर उनकी भरपाई उन लोगों को करनी पड़ती है जो कि बहुत ही हैंड टू माउथ बजट पर चलते हैं, जैसे लो इनकम वाले कंट्री। तो जब दाम बढ़ते हैं तो वो अमीर देशों में तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर गरीब देशों के प्लेट का खाना चला जाता है, घरों की बिजली चली जाती है। इस रिपोर्ट का मेन जो हाईलाइट है वो यही है।
अच्छा सम्राट, ये रशिया यूक्रेन वॉर तो अभी थमता नहीं दिख रहा है, लेकिन इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं?
लॉन्ग टर्म मेजर्स तो काफी ज्यादा है, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में भी COP27 की मीटिंग अभी चल रही है, उसमें भी बात होगी कि कैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर किया जाए। पर ऑल्टरनेटिव एनर्जी भी देखिए उसको एस्टैब्लिश होने में कुछ समय लगता है, बिल्कुल ही मतलब शॉर्ट टर्म में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। और अभी आप जैसे भारत का एग्जांपल आप लेंगे तो भारत में दो चीजें होती है एनर्जी के मैटर में, पहला तो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है और दूसरा जनरेशन कैपेसिटी क्या है। तो अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखेंगे तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 165 गीगावाट, सितंबर का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। 165 गीगावाट कितना है, तो ये भारत के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर सब मिला ले तो उसका 40% रिन्यूएबल है इंस्टॉल कैपेसिटी। तो मतलब ये सोचा जा सकता है कि 40% तो ठीक है, पर इंस्टॉल कैपेसिटी तो है, पर आप जनरेशन की बात करेंगे तो 40% इंस्टॉल कैपेसिटी है टोटल का, लेकिन जनरेशन कैपेसिटी वो 30% के भी नीचे है। यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इंस्टॉल्ड है पर वो कारगर अभी नहीं है, वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है उनका। तो अगर आप इंस्टॉलेशन की तरफ ध्यान भी दे दें तो पहले तो कुछ साल उसको इंस्टॉल करने में ही लगेंगे, उसके बाद उसको कार्यरत करने में कि वो बिजली जनरेट करना भी शुरू कर दे। तो लॉन्ग टर्म में तो चीजें हो रही हैं, कैसे सोलर पे, हाइड्रो पे और बाकी बायो पे रिलाई कर सकें। शॉर्ट टर्म ऐसा है कि शॉर्ट टर्म कुछ देश को फायदा भी हो रहा है, जैसे भारत रशिया से सस्ते तेल खरीद रहा है, पर वहीं यूरोपियन मार्केट में थोड़ा कट है। तो फिलहाल तो मुझको लगता है कि ये जारी ही रहेगा जो एनर्जी का क्राइसिस है।
शुक्रिया सम्राट। अब कल ही हमने बात की थी दिन भर में कि कैसे पिछले कुछ सालों से मौसम तेजी से अपना मिजाज बदल रहा है, कई तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं, चाहे गर्मी का हो या बाढ़ का हो या सूखे का। एक ऐसा ही रिकॉर्ड कल दिल्ली में बना और वो था पिछले 13 सालों में नवंबर के सबसे गर्म दिन का। कल यहाँ तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अब ये सुनकर हर कोई हैरान है क्योंकि नवंबर तो वो महीना होता है जब सर्दी के कपड़े निकाल लिए जाते हैं। इधर मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि नवंबर में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली में अब तक ठंड ने दस्तक नहीं दी है? आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल से मैंने बात की, जिन्होंने मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से इस बारे में जानकारी ली है।
जो सबसे बड़ी वजह है कि ठंड वापस एक बार लग रहा है कि दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ने लगा है, उसके पीछे पूर्व से चलने वाली हवा है। आमतौर पर जब सर्दियां आती हैं तो पश्चिम से हवा चलती है, यानी हिमालय की ओर से दिल्ली की तरफ हवा आती है। कई बार तो यूरोपीय देशों से भी हवा हिंदुस्तान में आती है जो दिल्ली होते हुए और बाकी प्रदेशों में जाती है। लेकिन अभी 3 दिन पहले अचानक जो हवा का रुख है वो बदल गया है और वो पश्चिम की तरफ से ना होकर के पूर्व की तरफ से हुआ है। और पूरब में जैसा आपको पता है कि पूरब में कोई ऐसा एरिया नहीं है, ऐसा रीजन नहीं है जहां से ठंडी हवाएं आए, इसीलिए इस समय तापमान थोड़ा बढ़ गया। दूसरी बात ये भी है कि इस समय बादल छाए हुए हैं जिसमें विक्षोभ जो है वो पश्चिमी भारत पर एक्टिव है, केंद्रित है, तो उसकी वजह से बादल भी छाए हुए हैं, उसने भी जो तापमान है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो ये दो मुख्य वजह है कि एक तो हवा का रुख जो आमतौर पर नवंबर के महीने में होता है वो इस समय नहीं देखा जा रहा है, और दूसरी बात ये कि बादलों ने थोड़ा एक तरीके से जो ब्लैंकेट इफेक्ट जिसको कहते हैं कि उसकी वजह से गर्मी सतह से बाहर नहीं निकल पाती है, उसकी वजह से भी गर्मी का एहसास।
और कुणाल, क्या आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहने वाली है? मौसम विभाग का क्या कहना है इस पर?
नहीं, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले आने वाले 1-2 दिनों में, कल या फिर परसों, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो सकती है क्योंकि बादलों का डेरा है अभी और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में। लेकिन उसके बाद जो है, बाद जब 10 तारीख को ये बादल छटेंगे उसके बाद हवा का रुख दोबारा पश्चिम की तरफ से होगा, जो कि एक सामान्य सी बात है सर्दियों के मौसम में। और जब 10 तारीख के बाद पश्चिम से फिर से हवाएं चलने लगेंगी तो फिर से एक बार तापमान में कमी देखी जाएगी और तापमान फिर से नीचे आएगा। तो अभी खासतौर पर जो दिन का तापमान है वो 33 डिग्री के आसपास बना हुआ था, आज भी जो है वो 30 डिग्री से ऊपर है। तो ये इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि अभी जो हवा है वो पश्चिम की तरफ से नहीं चल रही है। लेकिन इससे एक फायदा ये भी हुआ है कि पश्चिम से पराली का धुआं भी लेकर के आती थी, पंजाब और हरियाणा भी पश्चिम में है, तो वो उसके लिए यही वजह है कि इस समय दिल्ली में जो प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था 3-4 दिनों के तक वो कम हुआ और से वो वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया। तो ये सारी चीजें भी उसकी वजह से हो रही है। और बारिश भी आपको पता है कि 5 अक्टूबर के बाद, 5 से 6 अक्टूबर तक बारिश हुई थी, उसके बाद लगातार बारिश भी नहीं हुई है। तो बारिश की वजह से जो है वो मौसम भी शुष्क है, थोड़ा सूखा मौसम है, इस वजह से भी अभी गर्मी है जो नवंबर में आमतौर पर जिसका टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा अधिक देखा जाता है।
कुणाल, दिल्ली की बात हो ही रही थी तो मैं पोल्यूशन से भी जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने मौसम विभाग से बात की है तो उनका क्या कहना है पोल्यूशन को लेकर, उनका क्या अनुमान है? क्या ये जो ठंड देरी से आ रही है इसका कुछ पोल्यूशन से भी लेना देना है?
बिल्कुल, मौसम का जो रिलेशन है प्रदूषण से वो बनता है। और आमतौर पर प्रदूषण तब होता है जब दो स्थितियां बनती हैं, एक तो कि जब प्रदूषण के जो कारक हैं वो कहीं से लाए जाए, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड एरिया है, यहाँ पर कहीं पर भी वाटर बॉडी कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो इसमें प्रदूषण सीधे सीधे पंजाब हरियाणा या आसपास के राज्यों से भी आता है। तो वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब हवा का रुख बदले तो उससे और बढ़ेगा। इसके अलावा जब तापमान कम होता है तो हवा का जो मिक्सिंग हाइट होता है वो भी नीचे आ जाता है, यानी हमारे आसपास आ जाता है, तो उस हवा के मिक्सिंग हाइट पर भी तापमान कम होने का असर होता है। अभी चूंकि तापमान ज्यादा है तो हवा फैली हुई है और ऊपर जाकर के मिक्स हो रही है, इससे प्रदूषण का स्तर कम देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मिक्सिंग हाइट भी नीचे आएगी तापमान के घटने के साथ, तो प्रदूषण का असर जरूर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर बढ़ेगा।
शुक्रिया कुणाल। और अब पॉडकास्ट समेटने का वक्त है। एक जरूरी बात, हेलो डॉक्टर में इस बार बात हुई है डेंगू पर। डेंगू होने पर प्लेटलेट्स आखिर क्यों कम हो जाते हैं और ये कब जानलेवा हो सकता है, सुनिए इसे और कैसा लगा बताइएगा हमें। दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की, खुशबू कुमार के साथ थे आप, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।